चाहते हो नहीं ठहरना भी ठीक ही है। इन प्राणों का कोई विश्वास नहीं है। देखो मैंने कहा कि दो महीने के अंदर रावण मुझे मार देगा, लेकिन अब तो मुझे विश्वास हो रहा है कि प्राणों का भरोसा नहीं है। ये प्राण कब शरीर से निकल जाए कोई भरोसा नहीं। देखो जितना ज्ञान होता है ना आदमी को, उतना उसको अपना जीना या कम दिखता है। माने उसको ऐसा लगता है कि संसार में कुछ भी नहीं, कब प्राण निकल जाए। जितना जिसको वास्तविक ज्ञान होता है उतना ही वो इस विषय को समझता है। संतों ने कहा है कि भाई इस शरीर के अंदर नौ तो बड़े बड़े छिद्र हैं, और ये जितनी रोमावली है, ये रोमावली है, ये बहुत छोटे छोटे छिद्र है। इतने में भी वायु बरसों तक अटक जाती है, बड़ा आश्चर्य, बहुत आश्चर्य। इस काया है, इस काया में दो बड़े छिद्र और बाकी छोटे छिद्र, इतने में भी वायु 70 वर्ष का 80 वर्ष का 90 वर्ष का 100 वर्ष का आदमी जी जाता है। कहते आश्चर्य वायु रह कैसे गई अंदर, वायु तो कभी भी कहीं से निकल जाए, ये जी कैसे गया, जीने में आश्चर्य है। सीता जी कहते हैं कि प्राणी स्वपि न विश्वासो मई मम वानर पुंगव, प्राणों पर भी मेरा विश्वास नहीं रहा। अब तुम चले जाओगे तो भाई जाना भी तुम्हारे लिए उचित ही है, और मेरे मन में बड़ी पीड़ा भी होगी। देखो अब मैं तो कितनी कितनी मजबूत हो गई हूँ हनुमान, कितनी मजबूत हूँ दुख भोगने में। मैं सुख सुख चाहने वाली, सुख में पलने वाली, सुख से रहने वाली, दुखों को भोगते 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 बहुत मजबूत हो गई। अब मैं तुम्हारा ही दुख भोगूंगी बैठी बैठी। देखो मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अब एक ही बात सोचो, मुझे तो बार बार विचार आता है कि हनुमान तुम सागर को कैसे पार करोगे, सारी सेना सागर को कैसे पार करेगी। हनुमान मेरा मन तो एक बात में कच्चा है, राम जी भी सागर को कैसे पार करेंगे। इस सागर को तो केवल तुम गरुड़ और वायु तीन ही पार कर सकते हैं, दूसरे पार कैसे करेंगे, इसका समाधान क्या है। मेरे विचार में तो एक ही बात है भाई कि तुम्हारे जैसे कोई बांदर आ जाए तो इस लंका का नाश करके और रावण को मार करके मुझे ले जाए, तब तो पार पड़ेगी। तुम्हारी सेना भी तुम लाना चाहते हो, इतनी बड़ी सेना भी लाना चाहते हो, और सागर को तुम पार भी करना चाहते हो। जिस बंदर को तुम मार रखोगे वो रहना ही नहीं चाहेगा, वो बीच में खत्म हो जाएगा। मैं तो ये सब बात सोच करके और पागल सी हो गई हूँ। हनुमान जी ने कहा कि देखो माता जी, आपको इस विषय में चिंता नहीं करनी है, आपको इस विषय में बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मेरे जैसे क्या, मेरे जैसे तो करोड़ों करोड़ों बानर सुग्रीव के पास में है। हजारों लाखों करोड़ों बानरों के बाद हम तो बचे खुचे बहुत छोटे बंदरों में है, तभी हमको यहाँ पर भेजा है। हमको ये सोच के भेजा है सीता जी कि मरेगा तो मर जाएगा, आ जाएगा तो आ जाएगा, ऐसा समझ के भेजा है। हम छोटे हैं ना बंदर, हम हमारे जैसे मर भी जाए तो क्या है, और जाके आ भी गए तो भी क्या है। तो हम बहुत छोटे बंदरों में माने जाते हैं। उन बंदरों को तो माता जी आपने देखा भी नहीं। तो सुग्रीव आएंगे, उनके पास बल शक्ति कम नहीं है, और राम जी महाराज को साथ लेकर के आएंगे। वे अपने बाणों से इस लंका को भर देंगे। राक्षस राज रावण को जीने की कहीं पर भी जो है जीने का कोई अवकाश नहीं मिलेगा। पुत्र सहित परिवार सहित मारा जाएगा, आप विश्वास रखिए। और अब मुझे जाने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। सीता जी ने कहा जाओ बेटा, राम जी के चरणों में मेरा प्रणाम बोल देना। इस प्रकार से कहकर के और हनुमान जी महाराज वहां से सीधे अशोक वाटिका को छोड़ करके, और वहां एक अरिष्ट नाम का पर्वत था, उस अरिष्ट नाम के पर्वत पर चले गए। पर्वत पर जाकर उन्होंने जलती हुई लंका को देखा। अब थोड़ी थोड़ी लंबे कम हो रही है, क्योंकि अब जो है मैं बहुत देर हो गई जलते जलते, अब उसकी लंबे थोड़ी कम होने लगी है। ऐसा वो अरिष्ट पर्वत, उसके ऊपर भाई बड़ी भारी वनराजी, माने खूब जंगल, उसमें बड़े बड़े वृक्ष झाड़ियां और उसके बड़े बड़े पर्वत शिखर, वो मानो अपने हाथों से सूर्य का स्पर्श करने वाले हैं। वो मानो चंद्रमा का स्पर्श करने वाले हों, इतने ऊंचे ऊंचे उसके शिखर थे। उसके जो उसके अंदर रहने वाली जो धातुओं की खाने थी वो चमकती थी, कोई सोने की खान तो कोई चांदी की खान तो कोई तांबे की खान, बड़ी बड़ी जो है वहां पर खाने थी। और वो पर्वत बहुत बड़े मेघ के समान दिखाई देता था। उस पर्वत के अंदर एक संगीत सा सुनाई दे रहा था। जब ये वृक्ष आपस में यूं झूमते झूमते मिलते थे तो पत्तों की जो आवाज आती मिलने की उससे एक संगीत सा पैदा होता था। और वहां झरने जो गिरते थे उन झरनों के द्वारा बड़ी शोभा हो रही थी। वो मानो उसके अंदर एक कंपन पैदा होता है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाता हो और सुनने वाला शरीर को यूं यूं हिलाता हो। तान आती है, इसको बोलते हैं तान। तो ये जब तान आती है ऐसे ही ये झरने जो है, ये झरने जो टेढ़े मेढ़े झरने हैं, ये इस पर्वत की मानो तान हो। और इसके ऊपर बांस के बड़े बड़े वृक्ष हैं, और इन बांसों के वृक्ष के अंदर से जब वायु जाती है तब ऐसा लगता है कि पर्वत स्वयं श्वास ले रहा है। यहाँ पर बहुत जो है बदल आते हैं इनके ऊपर, वो बदल आकर के ऐसे मालूम देते हैं कि ये इसके बहुत बड़े बड़े कपड़े हैं। ऐसा वो पर्वत जिस पर साल है, ताल है, वंश है, इनके सबके वृक्ष हैं। पुष्पमान वृक्षों से ऐसा लगता है कि ये पुष्पों का ढेर लगा हुआ हो। ऐसे उस विशाल पर्वत के ऊपर अपने हनुमान जी महाराज जाकर के वहां पर खड़े हो गए। उनके अंदर राम जी के अब दर्शनों की बड़ी प्रबल इच्छा थी। देखो हनुमान का किसी ने पीछा नहीं किया, क्यों? वो अभी अपने आप को बचावे कि हनुमान जी की पीछा करें। हनुमान जी की पीछा करने की किसी के भी मन में नहीं आई। और हनुमान जी निर्भीक और निर्भय होकर के यहाँ खूब पर्वत के ऊपर विचरण कर रहे हैं। हनुमान जी जब पर्वत के ऊपर यूं पैर रख रहे हैं तो उसके शिखर भाग धार 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 बैठते हैं, जैसे अपने लोग किसी टीले पर चढ़ते हो और पैर रखते हो तो मिट्टी धंसती है, ऐसे वो शिखर है, वो शिखर नष्ट हो रहे थे। उसमें एक उत्तर शिखर के ऊपर वे जो है जाकर के और समुद्र को देखने लगे। समुद्र को देख करके और फिर उन्होंने जोर से वहां पर किलकारी की, जोर से आवाज भर करके अपने छाती में श्वास को लेकर के, और फिर हनुमान जी महाराज वहां जोर लगा करके उस देखो उड़ने से पहले जहां पर आदमी खड़ा रहता है वहां जोर तो लगाते ही, तो जोर लगा करके और उड़ने वाले थे तो उसके पैरों में आने वाली जो भूमि थी वो भूमि सब खिसकने लग गई। सारा पर्वत यूं कांपने लग गया, वृक्ष है वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ी गिरने लग गए। वृक्षों के नीचे की जो जड़े थी वहां वो जड़े खिसक गई, मिट्टी खिसक गई तो वृक्ष भी आकर गिर गए। और वहाँ की जो कंदराएं थी जिन कंदराओं के अंदर सिंह और हाथी रहते थे वो सब अपनी कंदरा छोड़ छोड़ करके भगने लगे। और उस पर्वत के ऊपर विद्याधरियां आई थी, वो भी विद्याधरियां भी छोड़ छोड़ के आकाश में जाने लगी। बड़े बड़े सांप थे उसमें, सांप सांप भी अपनी जगह छोड़ करके इधर उधर बचने लगे। वो जो है पीड़ित होने लगा पर्वत, और पर्वत पीड़ित होकर के और रसातल में सिंह जाने लगा। हनुमान जी महाराज ने देखा कि पूरा पूरा ढह जाएगा तो बड़ी मुश्किल होगी, अतः जब तक ये पर्वत पृथ्वी के ऊपर बराबर नहीं होता तब तक मुझे छलांग लगा लेनी चाहिए। तो उन्होंने सियावर रामचंद्र की ऐसा जय बोल करके आकाश में उन्होंने छलांग लगा दी। अब हनुमान जी महाराज आकाश में छलांग लगाकर ऊपर जा रहे हैं आकाश की तरफ। ऐसा लगता है कि कोई पक्षधारी पर्वत है वो जा रहा हो। अब भाई वो आकाश एक तरह से समुद्र के समान दिखाई देने लगा हो। कैसे समुद्र के समान? कि देखो जो है समुद्र के अंदर सर्प रहते हैं, समुद्र के अंदर जो है हाथी भी चलते फिरते दिखाई देते हैं, समुद्र के अंदर कई मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, ये रहते हैं। उसी प्रकार से आकाश के अंदर स्वाति नक्षत्र है, वो हंसादि के समान दिखाई देता है। और ऐरावत है, हाँ इसका ऐरावत हाथी इंद्र का, वो जिस प्रकार से महाद्वीप के समान दिखता है, पुनर्वसु है वो महामछली के समान दिखता है, ऐसे गगन रूपी सागर के अंदर हनुमान जी पार होते जा रहे हैं। अब नीचे तो है जल का सागर और ऊपर है आकाश का सागर, इन दोनों के बीच में हनुमान जी महाराज चले जा रहे हैं। हनुमान जी के सामने बड़े बड़े मेघ आते हैं, बदल बदलों को हनुमान जी पार करते हैं, अपने हाथों से खींचते हुए से दूर करते हुए से भी जाते हैं। कई रंग के बदल आते हैं, काले बदल है, सफेद बदल है, नीले बदल है, लाल बदल है, मजीठ के रंग जैसे बदल है। ऐसे बदलों में हनुमान जी कभी छिपते हैं, कभी प्रकट होते हैं, कभी छिपते हैं, कभी प्रकट होते हैं। जैसे चंद्रमा कभी बदलों के अंदर प्रकट होता दिखता है, कभी छिपता हुआ दिखता है, जैसे सूरज कभी बदलों के अंदर दिखता है, कभी बाहर दिखता है, आज ऐसा ही दिख रहा है। दृश्यादृश्य तनुर्वीरस तथा चंद्रायते अम्बरे, इस प्रकार से ये आकाश के अंदर चंद्रमा के समान हनुमान जी महाराज दिखाई दे रहे हैं। और हनुमान जी महाराज भाई वो मेघ वृंदों को फाड़ते हुए आकाश में बहुत नाद कर रहे हैं और वो नाद बहुत दूर तक सुनाई देता है। इधर लंका तो भाई आकुल व्याकुल हो ही गई और रावण बड़ा व्यथित हो ही गया। और उसके बाद हनुमान जी महाराज जब दौड़े चले जा रहे हैं, चलते 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 समुद्र ने फिर मैनाक से कहा कि मैनाक जाते समय तुम्हारे पर हनुमान जी नहीं ठहरे तो आते समय ठहर जाएंगे, अब तुम चले जाओ, अब तो विश्राम के लिए बोलो अपना काम करके जा रहे हैं। वो मैनाक फिर वापस खड़ा हुआ, मैनाक से कहा हनुमान जी ने कि मैनाक जी मुझे आप क्षमा कीजिएगा, जाते समय तो सीता के खोज की मुझे जल्दी थी और अब मुझे राम जी के पास में जाने की उससे भी ज्यादा जल्दी हो रही है, आते हुए मैं अभी भी आपके ऊपर ठहर नहीं सकता हूँ। ये मैनाक जो थे वो इंद्र के द्वारा यहाँ समुद्र के अंदर गिराए हुए थे। हनुमान जी महाराज ने फिर जोर से नाद किया, वो नाद किया, नाद करके हनुमान जी ने यहाँ पूंछ को ऊंचा बनाया, नाद करते करते आकाश के अंदर रहने वाले सिद्ध चारण वगैरह ने सबने उनकी आवाज सुनी, विद्याधरों ने देवताओं ने आवाज सुनी और वे सब जो है हनुमान जी महाराज के कृत्य की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। चलते 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 हनुमान जी महाराज जब इस प्रकार से नाद करते हैं तो उन बांदरों के कान के अंदर अरे आवाज आ रही है, कान लगाते हैं, कितनी आवाज है ये देखो, आवाज हमारे नजदीक आ रही है, कैसी आवाज है, अरे वायु के द्वारा ये और भी तेज बना दी गई है, ये देखो आवाज क्या है, मेघों की सी आवाज है। जामवन जी ने कहा कि बंदरो बजाओ तालियां, आगे हनुमान, हनुमान की आवाज है, सर्वथा कृत कार्यो सौ, वो खूब अपना पूरा काम करके आ रहा है, हनुमान के कार्य में कोई संदेह कैसे हो सकता है। बिना काम किए हुए हनुमान इस प्रकार से मस्ती का नाद, विजय का डंका नहीं बजा सकते, देखो कैसे वो बोल के आ रहे हैं, जरूर उन्होंने अपना काम किया है। सब बांदर अपने अपनी जगह खड़े हो, क्योंकि आवाज उधर से आ रही, उधर ही एक तरफ दृष्टि है कि हाँ अब इधर आएंगे, इधर आएंगे हनुमान जी। सब लोग जो है एकदम स्तब्ध हो गए। हनुमान जी अपने भुजाओं को, भुजाओं के वेग को बढ़ाते 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 आए हैं। इधर आकाश में हनुमान जी महाराज को बंदरों ने अब अपनी आंखों से देख लिया, सारे बंदर खुशी में झूम उठे और हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, सबके मन में बड़ी खुशी हुई और देखा कि हनुमान जी सीधे इस पर्वत पर ही आ रहे हैं, तो जो पर्वत के आसपास नीचे ऊपर जो सब बंदर थे सब दौड़े दौड़े आकर एक जगह इकट्ठे हो गए। और इतने में ही हनुमान जी महाराज उन बंदरों के बीच में गर्जना करते हुए उपस्थित हो गए। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। हनुमान जी महाराज की सब बांदर जय जयकार करने लगे। अब बंदर है कोई छोटे बड़े सब हाथ जोड़ कर खड़े खड़े हो गए, अभिवादन किया। वायुनंदन हनुमान को हम आज बहुत 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 प्रणाम करते हैं। देखो एक होता है प्रणाम, एक होता है नमस्कार। नमस्कार तो होता है बराबर वालों को, प्रणाम होता है अपने से बड़े वालों को, और एक होता है शुभ आशीर्वाद। शुभ आशीर्वाद तो सब जानते हैं, प्रणाम में और नमस्कार में भेद होता है। केवल जो नमः होता है वो तो भगवान के लिए होता है, ओम रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। और आपस में व्यक्ति व्यवहार में बोलते हैं ना, वो नमस्कार की नमस्कार, बराबर वालों में नमस्कार चलता है, और अपने से जो बड़े होते हैं उनको प्रणाम चलता है, प्रणाम। तो हनुमान जी महाराज इस प्रकार से फिर जो है गर्जना किए हुए जब वहां पहुंचे तो छोटे बड़े सब बंदर हैं। अब कोई तो हनुमान जी का पैर पकड़ता है, तो कोई घुटना पकड़ता है, तो कोई हाथ पकड़ता है, तो कोई कंधे का सहारा लेता है। हनुमान जी महाराज ये सब झूम गए, सब झूम गए। ऐसा लगने लगा कि जैसे इस पर्वत के ऊपर एक पर्वत और आ गया हो। अब हनुमान जी को चारों तरफ से सबने घेर लिया, और घेर करके हनुमान जी महाराज के मुंह की तरफ सब देखते हैं, आंखों की तरफ सब देखते हैं, और कोई तो कहते हैं लो लो हनुमान जी आप आपके हुए थोड़ा जल पियो जल पियो। कोई जल ला के देखते हैं देते हैं, कोई उनको फल ला करके देते हैं, कोई उनको पुष्प की माला पहनाते हैं। हनुमान जी का ये बंदर लोग बड़े स्वागत करते हैं, क्योंकि हनुमान जी की अभी तक कुछ बोला नहीं गया है आपस में हो। हनुमान जी महाराज के चेहरे से और उनके उनके नाद से समझ लिए कि सीता जी की खोज इन्होंने कर ली है। हनुमान जी महाराज ने अपने बड़े जितने बंदर थे उन सब बंदरों के चरणों में प्रणाम किया, जामवंत जी के चरण छू के प्रणाम किया, और अपने से बड़े थे सबके चरण छू के प्रणाम किए। और प्रणाम करने के बाद हनुमान जी से इतना ही शब्द निकला कि माता सीता के दर्शन हो गए। बस ये शब्द सुना तो सब लोग बंदर बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। और फिर कहा कि अच्छा अच्छा सुनो, ऐसा एक जगह बैठो, आओ बैठो, पहले आप सुस्ताओ, थकान मिटाओ, उसके बाद आप कहो। तो हाथ पकड़ करके बंदर लोग ले गए, एक ऊंची सी चट्टान थी वहां पर उनको बैठा दिया, और बैठा करके सब लोग उनके पास में बैठ गए और कहने लगे अब आप सुनाओ। तो हनुमान जी महाराज के अंदर बहुत प्रेम तो था ही। हनुमान जी महाराज भाई बोलते हैं फिर रुकते हैं, बोलते हैं फिर रुकते हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे साथियों, मैं यहां से गया तो अशोक वाटिका के वृक्ष के नीचे मैंने सीता को देखा, और उस सीता के चारों तरफ बहुत सी राक्षसियां मंडराई रहती हैं, और वो राक्षसियां सीता को डराती रहती हैं। परंतु सीता के मन में राम जी के लाल दर्शनों की ऐसी लालसा है कि उनका भय सीता जी के मन में नहीं है। सीता जी के एक चोटी है, और सीता जी उपवास से बड़ी कृश हो गई हैं, वो मलिन वस्त्र पहनी हुई है, और मैंने सीता को देख लिया है। इतना कहे तो हनुमान जी थोड़े गंभीर हो गए। हनुमान जी को सीता जी की अवस्था देखते देखते उनके मन में विरह आ गया। परंतु इधर बांदर तो बड़े राजी में, उनको तो जीवन मिल गया। दो कारण से खुशी हुई, एक तो खुशी इस बात से हुई कि सीता जी के दर्शन हो गए, दूसरी खुशी इस बात की कि भाई हमारा जीवन बच गया, राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, सुग्रीव की आज्ञा का पालन हो गया। इन सब बातों को लेकर ये बंदर कोई उछलने लगा, कोई नाचने लगा, कोई गर्जना करने लगा, कोई किलकिलाने लगा, कोई उछल करके और ऊपर जाए, और ऊपर भी कितनी खुशी में हो, देखो ये गुड़कता गुड़कता ऊपर जाए, ऐसे गुलाची खाते खाते ऊपर जाए, कोई गुलाची खाते 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 नीचे आए। ऐसे बंदर बड़े प्रसन्न हुए। अंगद जी ने कहा कि हे हनुमान, बल में, पराक्रम में, बुद्धि में तुम्हारे समान हमारी सेना में एक भी बंदर नहीं है। देखो तुम यहाँ से छलांग लगा करके सीधे लंका में पहुंच गए, इतना विशाल सागर तुम्हारे अलावा कौन इसका लंघन कर सकता है। हनुमान तुमने हमारे सबके प्राण बचाए हैं, हम आजीवन तुम्हारे ऋणी रहेंगे। हनुमान आज के बाद जो हम जी रहे हैं ये प्राण तुम्हारे डाले भी हमारे शरीर में है, तुम्हारी कृपा से आज कितना बड़ा काम हो गया। आज हम जाकर राम जी को मुंह दिखाने लायक हो गए, आज हम सुग्रीव के पास जाकर ये कह सकते हैं कि आपके आदेश का पालन हुआ है। ये तो है ही, इसके अलावा भी हे राम, आपकी जो अपने स्वामी में जो भक्ति है, हमें लगता है कि उस प्रगाढ़ भक्ति से ही आपने इतना तेज आया है, उस प्रगाढ़ भक्ति से आपने इतना बड़ा बल आया है। ओह सीता के आपने दर्शन कर लिए, हनुमान जी आपने सीता का भी आशीर्वाद प्राप्त किया है। ओह सीता जी जीवित हैं, बिचारी मिलने की आशा है इसलिए जीवित है, नहीं तो जीवित रहने का कोई कारण नहीं बनता। तब अंगद जी को, हनुमान जी को, जामवंत जी को और सबको जो है इकट्ठे कर करके बांदरों ने कुछ कहा कि देखो देखो अंगद जी, देखो जामवंत जी, अपने सब मिलकर के हनुमान से पूरी की पूरी बात पूछे कि आप कैसे लंका में गए, कैसी ये लंका है, कैसे आपने पार किया, ये सारी की सारी बात हम हनुमान जी से पूछना चाहते हैं। और हनुमान जी हमको सारी बात बताए तब जाकर के हमारे मन में संतोष होगा। हनुमता कीर्तिमता यशस्विना तथा अंगदेनांगदनद्दबाहुना मुदा तदाध्यासितमुन्नतम महत मही धराक्रम ज्वलितम श्रिया भवत। हनुमान जी महाराज उस समय में ऐसे मालूम देने लगे जैसे कोई पर्वत हो और उस पर्वत में कोई आग लग गई हो, ऐसे हनुमान जी महाराज की शोभा हो रही थी। अब सब लोग, अब जामवंत जी ने कहा कि देखो भाई इस पर्वत के ऊपर तो अपने सब पूरे बैठ नहीं सकते हैं, अपन पर्वत से नीचे चलो और समुद्र के किनारे बहुत बड़ा तट है, उस तट के वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर उस तट के वहां पहुंच करके और वहां वहां जो है बैठने की बहुत अच्छी सुविधा भी है और एक जगह भी ऊंची है वहां पर बैठ करके और सब बांदरों के बीच में हनुमान अपने लंका यात्रा के विषय में सुना है और उस विषय में हनुमान हमको एक एक बात पूरी पूरी बात बताए। उस बात के बाद अपने लोग ये विचार करेंगे कि ये बात तो राम जी से कहने की है और ये बात नहीं कहने की है, क्योंकि राजाओं के सामने हर बात नहीं बताई जाती, बड़े आदमी के सामने भी पूरी बात नहीं बताई जाती। जितने से उनका हृदय प्रसन्न होता हो, जितने से हमारे कार्य का प्रयोजन सिद्ध होता हो, बस उतना ही अपने को कहना चाहिए जिससे उनका मन प्रसन्न रहे और उत्साहित रहे। इसलिए हनुमान तुम यहाँ से चल करके और वहाँ समुद्र के किनारे चलो, वहाँ हम सब बैठ करके तुमसे बात सुनेंगे। तब जामवंत जी की बात सुन करके अब भाई हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे आते हैं। सारे बांदर जामवंत जी के कहने से समुद्र के किनारे आकर बैठते हैं।
पूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्।
कैसी विलक्षण भगवान की कृपा है कि हम लोग जिस चीज के अधिकारी नहीं हैं, वो चीज भगवान हमको उदारता पूर्वक दे रहे हैं। इस कलयुग में, इस वातावरण में ऐसे वाल्मीकि जी महाराज के भाव जिसके हम कभी अधिकारी नहीं हो सकते, वही तो चीज कृपा से मिलती है। जैसे बालक चलने योग्य नहीं होता लेकिन माता की गोद में बैठने पर वो कोसों कोसों चल लेता है, इसी प्रकार से मूकं करोति वाचालं पंगुं लंग पंगु लंगयते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। ये भगवान की कृपा है, इस कृपा का अपने लोग उपयोग करें और वाल्मीकि जी महाराज के साथ अब आगे की राम कथा को अपने सुनते हैं। सारे बानर हनुमान जी महाराज से लंका यात्रा के विषय में पूछने लगे और वे सब के सब जब बैठ गए तब उनमें हनुमान जी ने वो सब बात बताई जो वे लंका में पधारे और ये बताई जामवंत जी के पूछने पर। जामवंत जी ने बड़े प्रेम के साथ महावीर हनुमान से पूछा कि हनुमान तुमने सीता जी को कैसे देखा, सीता जी वहां कैसे रहती है, क्रूर कर्मा दशानन का क्या आचरण है, वो सीता के प्रति कैसा बर्ताव करता है। जो कुछ तुमने देखा, जो कुछ तुमने समझा, उसको तुम स्पष्ट साफ बताओ। देवी सीता ने तुमसे क्या कहा है, क्योंकि सब बात सुनने के पश्चात ही अपने को श्री राम के पास में वो बात कहनी है जो अपने को कहनी चाहिए, और जो बात नहीं कहनी है, छिपानी है, वो बात अपने को नहीं कहनी है। इसलिए आप पूरी बात बताओ। हनुमान जी महाराज ने उस समय में अपने मन से सीता जी का स्मरण किया और जिस दिशा में सीता जी थी उस दिशा को उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके अब हनुमान जी महाराज बड़े विस्तार के साथ अपनी यात्रा सुना रहे हैं। अब आप लोग किसी प्रकार से उदासीन मत होना कि ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, ये अपने को तो सुनी सुनाई दिखती है, लेकिन जिस अवस्था में बानर थे उनके लिए तो कुछ भी पता नहीं है। आते उन बानरों के मन में क्या भाव थे, उस भाव में बैठ करके अपने को ये बात सुननी है। हनुमान जी ने कहा कि हे मित्रों, मैं आप लोगों के सामने ही महेंद्र पर्वत से जब उड़ा था तब अपने पूरे वेग के साथ मैं समुद्र का लंघन कर रहा था। उस समय में मेरे सामने एक अचानक पर्वत प्रकट हो गया। उस पर्वत के शिखर बड़े मनोहर थे। वो पर्वत अनेक प्रकार की वन संपदाओं से युक्त था। वो मेरे सामने आया, मेरे मन में विचार आया कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा विघ्न है, अतः इस विघ्न को मैं किस प्रकार से टालूं। तो फिर मैंने विचार किया कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो विघ्न को न गिन करके अपने लक्ष्य की तरफ देखता है। मैंने उस समय अपने छाती से उसका शिखर भाग दहाया और अपने पूंछ से उस पर्वत का स्पर्श किया और उसके शिखर भाग का जब सैकड़ों टुकड़ा हो गया तो वो पर्वतराज बहुत प्रसन्न हुए और मुझे बड़ी मधुर वाणी में आश्वस्त करते हुए कहा कि देखो, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, मेरा नाम मैनाक है और तुम्हारे पिता की कृपा से मैं समुद्र में निवास करता हूँ। पहले हम पक्षवान हुआ करते थे, पंख वाले होते थे, पृथ्वी पर जहां तहां हम चले जाते थे, प्राणियों को हमारे द्वारा बड़ी बाधा पड़ती थी, तब इंद्र ने हमारे पांव काटने चालू किए। वो इंद्र मेरे पीछे भी पड़ा था, लेकिन तुम्हारे पिता वायु ने मुझे जोर से धक्का देकर समुद्र में गिरा दिया। इस कारण से मैं बच गया। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता था, इसीलिए मैंने शिखर भाग ऊपर करके तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध किया था। लेकिन तुम यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। तब वो मैनाक मेरे सामने मानव शरीर धारण करके उपस्थित हुआ और फिर वो समुद्र के अंदर डूब गया, शरीर के साथ समुद्र के अंदर चला गया। मैंने इस चीज को अपने चित्त में बिल्कुल स्थान नहीं दिया। मैं बड़ा वेगवान होकर लंका की ओर जा रहा था। बीच में मुझे एक स्त्री दिखाई दी, वो सर्पों की माता सुरसा थी। समुद्र के मध्य में अकस्मात वो भी प्रकट हुई। वो जोर से चिल्लाकर कहने लगी, अट्टाहा।